प्रज्ञोपनिषद प्रथम मंडल लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण टीका। लोक कल्याण के लिए जन जन तक धर्म धारणा का प्रसार विस्तार करने का व्रत लेकर निरंतर विचरण करने वाले नारद ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ गिने गए और देवर्षि के मूर्धन्य सम्मान से विभूषित हुए। एकमात्र उन्हीं को यह सुविधा प्राप्त थी कि कभी भी बिना किसी रोक टोक विष्णु लोक पहुंचे और भगवान के निकट बैठकर अभीष्ट समय तक प्रत्यक्ष ज्ञान चर्चा करें। यह विशेष सुविधा उन्हें लोक कल्याण को ही आत्म कल्याण मानने की परामर्थ परायणता के कारण मिली थी। वे समय समय पर भगवान के समीप पहुंचते और सामयिक समस्याओं पर विचार करके तदनुरूप अपना मत बनाते और भावी कार्यक्रम निर्धारित करते। व्याख्या। परमार्थ में सच्ची लगन यदि किसी में हो तो उसे पुण्य अर्जन के अतिरिक्त आत्मकल्याण का लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को तारते हैं, स्वयं अपनी नैया भी जीवन सागर में खेले जाते हैं। नारद ऋषि को भगवान की विशेष अनुकंपा इसी कारण मिली कि उन्होंने परहित को अपना जीवनोद्देश्य माना। इसके लिए वे निरंतर भ्रमण करते, जन चेतना जगाते व सत्य परामर्श देकर लोगों को सन्मार्ग की राह दिखाते थे। ध्रुव, प्रहलाद तथा पार्वती को अपने सामयिक मार्गदर्शन द्वारा उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर किया। इसी विभूति ने उन्हें देवर्षि पद से सम्मानित किया तथा भगवान के सामीप्य का लाभ भी उन्हें मिला। चूंकि वे सतत जनसंपर्क में रहते थे व लोक कल्याण में रत रहते थे, इसी कारण सामयिक जन समस्याओं के समाधान हेतु वे परामर्श मार्गदर्शन हेतु प्रभु के पास पहुंचते थे व अपनी भावी नीति का क्रियान्वयन करते थे। ऐसे परामर्श परायण व्यक्ति जहां भी होते हैं सदैव श्रद्धा सम्मान पाते हैं। टीका। एक बार उनके मन में जिज्ञासा उठी। उच्च स्तर के लोग तो ब्रह्म विद्या के गहन अवगाहन के लिए समय निकाल लेते हैं। संचित सुसंस्कारिता के कारण कठोर व्रत साधन, योगाभ्यास एवं तप साधना भी कर लेते हैं, किंतु सामान्य जनों की मन स्थिति परिस्थिति उथली होती है। ऐसी दशा में वे अधिक कर नहीं पाते। थोड़े में सरलता पूर्वक आत्मकल्याण का साधन बन सके ऐसा मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त नहीं होता। अस्तु, भगवान से पूछना चाहिए। सर्वसाधारण की सुविधा का ऐसा ब्रह्म ज्ञान, आत्मविज्ञान एवं योग साधन क्या हो सकता है जिसके लिए कुछ अतिरिक्त न करना पड़े, मात्र दृष्टिकोण एवं जीवनचर्या में थोड़ा परिवर्तन करके ही जीवन लक्ष्य को पूरा करने का प्रयोजन सध जाए। व्याख्या। जनमानस को स्तर की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वे जो तत्व दर्शन, साधन तपश्चर्या के मर्म को समझते हैं, उतना कठोर पुरुषार्थ करने योग्य पात्रता भी उन्हें पूर्व जन्म के अर्जित संस्कारों व स्वाध्याय परायणता के कारण मिल जाती है। परंतु देवर्षि नारद ने जन जन में प्रवेश करके पाया कि दूसरे स्तर के लोगों की संख्या अधिक है, जो जीवन व्यापार में उलझे रहने के कारण अथवा साधना विज्ञान के विस्तृत उपक्रमों से परिचित होने का सौभाग्य न मिल पाने के कारण अध्यात्म विद्या के सूत्रों को समझ नहीं पाते, व्यवहार में उतार नहीं पाते तथा ऐसे ही उथली स्थिति में जीते हुए किसी तरह अपना जीवन संकट खींचते हैं। विशेष लोगों के लिए तो विशेष उपलब्धियां हैं, ऐसे असाधारण व्यक्तियों की तो बात ही अलग है। उनके जीवन उपाख्यान यही बताते हैं कि वे विशिष्ट विभूति संपन्न होते हैं। टीका। इस पूछताछ के लिए देवर्षि नारद बैकुंठ लोक पहुंचे। नारद ने नमन वंदन किया, भगवान ने भी उन्हें सम्मानित किया। परस्पर कुशल क्षेम के उपरांत अभीष्ट प्रयोजनों पर चर्चा प्रारंभ हुई, जो संसार की कल्याण कामना से युक्त थी। नारद उवाच। टीका। प्रसन्नचित देवर्षि ने विनयपूर्वक पूछा, देव, संसार में जीवनचर्या को ही साधनामय बना लेने और परम लक्ष्य प्राप्त कर सकने का सरल उपाय बताएं, ऐसा सरल जिसे सामान्य जन जीवन में समाविष्ट करना कठिन न हो, घर छोड़कर कहीं न जाना पड़े और ऐसी तप तितिक्षा न करनी पड़े जिसे सामान्य स्तर के लोग न कर सके। व्याख्या। भगवान से देवर्षि जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह सारगर्भित है। सामान्य जन भक्ति वैराग्य तप का मोटा अर्थ यही समझते हैं कि इसके लिए एकांत साधना के मर्म को नहीं जानते। इसी जीवन साधना प्रभु परायण करने उपवन जाने की आवश्यकता पड़ती है, पर इस उच्च स्तरीय तपश्चर्या के प्रारंभिक चरण जीवन साधना जीवन के विधि विधानों को जानने, उन्हें व्यवहार में कैसे उतारा जाए, इस पक्ष को विस्तार से खोलने की वे भगवान से विनती करते हैं। रामायण में काक भुसुंडी जी ने इसी प्रकार का मार्गदर्शन गरुड़ जी को दिया है। जीवन साधना कैसे की जाए इसका प्रत्यक्ष उदाहरण राजा जनक के जीवन में भी देखने को मिलता है। श्री भगवान वाच। टीका। नारद की जिज्ञासा जानकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवर्षि, आप तो हमारे मन की बात कह रहे हैं। समय की आवश्यकता को देखते हुए इस प्रसंग पर चर्चा होना और निर्धारण को व्यापक किया जाना आवश्यक भी था। व्याख्या। जो जिज्ञासा भक्त के मन में घुमड़ रही थी वही भगवान के भी अंतः में विद्यमान थी। भक्त हमेशा भगवान की आकांक्षा के अनुरूप ही विचारते हैं एवं अपनी गतिविधियों का खाका बनाते हैं। सच्चे भक्त की कसौटी पर देवर्षि खरे उतरते हैं। जब ही वे जनसामान्य की समस्या को लेकर प्रभु से मार्गदर्शन मांगते हैं, ऋषिवर नारद से श्रेष्ठ और हो ही कौन सकता था जो सामयिक आवश्यकता अनुसार अपने प्रभु के मन की इच्छा जाने वो उनकी प्रेरणाओं समस्याओं के समाधानों को जन जन के गले उतार सके। टीका। इन दिनों सर्वत्र अनास्था का दौर है। अदूरदर्शिता ग्रस्त हो जाने से लोग मानवीय गरिमा को भूल गए हैं। अचिंत्य चिंतन और अनुयुक्त आचरण में संलग्न हो रहे हैं, फलतः रोग शोक और कलह भय विनाश का वातावरण बन रहा है। भीषण विभीषिकाएं निरंतर धरती के अस्तित्व तक को चुनौती दे रही है। व्याख्या। यहां भगवान आज की परिस्थितियों पर संकेत करते हुए अनास्था की विवेचना करते हैं। वह वातावरण में संव्याप्त कलुष तथा भयावह परिस्थितियों का कारण भी श्रद्धा तत्व की अवमानना को ही बताते हैं। मनुष्य के चिंतन और व्यवहार से ही आचरण बनता है, वातावरण से परिस्थिति बनती है और वही सुख दुख उत्थान पतन का निर्धारण करती है। जमाना बुरा है, कलयुग का दौर है, परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल बन गई है, भाग्य चक्र कुछ उल्टा चल रहा है, ऐसा कहकर लोग मन को हल्का करते हैं, पर इससे समाधान कुछ नहीं निकलता। जन समाज में से ही तो अग्रदूत निकलते हैं। प्रतिकूलता का दोषी मूर्धन्य राजनेताओं को भी ठहराया जा सकता है, पर भूलना नहीं चाहिए कि इन सबका उद्गम केंद्र मानवीय अंतराल ही है। आज की विषम परिस्थितियों को बदलने की जो आवश्यकता समझते हैं उन्हें कारण की तह तक जाना ही होगा, अन्यथा सूखे पेड़ को मुरझाते वृक्ष को हरा बनाने के लिए जड़ की उपेक्षा करके पत्ते सींचने जैसी विडंबना ही चलती ही रहेगी। आज अंत के उद्गम से निकलने तथा व्यक्ति व परिस्थितियों का निर्माण करने वाली आस्थाओं का स्तर गिर गया है। मनुष्य ने अपनी गरिमा खो दी है और संकीर्ण स्वार्थपरता का विलासी परिपोषण ही उसका जीवन लक्ष्य बन गया है। वैभव संपादन और उद्दत प्रदर्शन उच्च श्रृंखल दुरुपयोग ही सबको प्रिय है। समृद्धि बढ़ रही है पर उसके साथ रोग कला भी प्रगति पर है। प्रतिभाओं की कमी नहीं पर श्रेष्ठता संवर्धन वह निकृष्टता उन्मूलन हेतु प्रयास ही नहीं बन पड़ते। लोकमानस पर पशु प्रवृत्तियों का ही आधिपत्य है। आदर्शों के प्रति लोगों का न तो रुझान है न उमंग ही। दुर्भिक्ष संपदा का नहीं आस्थाओं का है। स्वास्थ्य की गिरावट, मनोरोगों की वृद्धि, अपराध वृत्ति तथा उदंडता सारे वातावरण में संव्याप्त है और ये ही अदृश्य जगत में उस परिस्थिति को विनिर्मित कर रही है जिसके रहते धरती महाविनाश युद्ध की विभीषिकाओं के बिल्कुल समीप आ खड़ी हुई है। भगवान ने यहां स्पष्ट संकेत युग की समस्याओं के मूल कारण आस्था संकट की ओर किया है। सड़ी कीचड़ में से मक्खी, मच्छर, कृमि कीटक, विषाणु के उभार उठते हैं। रक्त की विषाक्तता फुंसियों के रूप में, ज्वर प्रदाह के रूप में प्रकट होती है। ऐसे में प्रयास कहां हो ताकि मूल कारण को हटाया जा सके, अंत की निकृष्टता को मिटाया जा सके, इसी तथ्य की विवेचना भी करती हैं।